स्थित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना की पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है संगति। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
हमको है यकीन हम जाएंगे वहीं यीशु रहता है। हमको है यकीन हम जाएंगे वहीं जहाँ यीशु रहता है, जहाँ यीशु रहता है। कोई उलझन होगी न कोई दुख होगा न कोई दुश्मनी पर तुम्हें शांति रहेगी। न कोई भूख होगी न कोई प्यास होगी न कोई उलझन होगी न कोई दुख होगा न कोई दुश्मनी पर तुम्हें शांति रहेगी। हमको है यकीन जाएंगे वही जहाँ यीशु रहता है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने मित्रों के साथ बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, खास करके उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से पहला यूहन्ना की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन फिर से एक बार कर सकते हैं। जब हम अलग अलग स्थानों पर बैठकर रेडियो के माध्यम से आपके वचन को सीखते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब वे आपके वचन में से सुने, आपके वचन को सुने, तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में अधिकाई से कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन के हर एक निर्बलताओं को आप प्रकट करें, ताकि वे सत्य को जाने और सत्य के द्वारा वे स्वतंत्र किए जाएं। इस घड़ी हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो बीमार अवस्था में हैं, निराश और परेशान हैं, नौकरी की तलाश में हैं। पिताजी, आप उन पर दया दृष्टि करें, अपने वचन के द्वारा उन्हें सामर्थ्य दें, उन्हें धैर्य दें, उन्हें आशा दें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम देख रहे हैं कि यूहन्ना हम विश्वासियों से कहता है कि हमें इस संसार से, अर्थात इस संसार में जहां शैतान की नीतियां हैं, उससे प्रेम नहीं रखना है। शैतान की नीतियां हैं शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और घमंड, क्योंकि यह पिता परमेश्वर की ओर से नहीं है। संसार और अभिलाषाएं मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। यूहन्ना कहता है कि अंतिम समय आरंभ हो गया है। अंतिम समय की पहचान यह है कि मसीह के विरोधी खड़े होंगे और मसीह के विरोधी खड़े होने लगे हैं, और वे हम में से ही हैं, क्योंकि वे प्रभु यीशु और परमेश्वर का इनकार करते हैं। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि इसी प्रकार बहुत सारे विश्वासी हैं जो इस संसार में रहते हैं और अपने पुराने स्वभाव में पड़े हुए हैं, उसके साथ उनका द्वंद चलता रहता है। आइए आज हम आगे बढ़ते हुए पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 16 पद को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, यूहन्ना इस संसार की 3 बातों का उल्लेख करता है। ये परीक्षाएं हमारी ही नहीं हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसके 6 पद में उसने हव्वा को भी ऐसे ही बहकाया था, और मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 1 से 11 पद में उसने प्रभु यीशु को भी ठोकर खिलाना चाहा था। तो आइए हम देखते हैं पहली बात, शरीर की अभिलाषा। हवा ने देखा कि वह पेड़ का फल खाने के लिए अच्छे हैं और अच्छे फल उत्पन्न करते हैं। मेरे मित्रों, यदि आप भूखे हैं तो वह अच्छा फल था। धर्मशास्त्र में पेटुपन और अनेक अन्य शारीरिक अभिलाषाओं को दंडनीय बताया गया है। यूहन्ना 4 भी शारीरिक अभिलाषा है। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है कि 40 दिन उपवास रखने के बाद प्रभु यीशु को भूख लगी, तो शैतान ने उसे उकसाया कि वह तो परमेश्वर का पुत्र है और पत्थर को रोटी बना सकता है। यीशु ऐसा कर सकता था, परंतु उसने नहीं किया। परीक्षा का परिप्रेक्ष्य एक ही है, शरीर की अभिलाषा। परीक्षा में पाप नहीं है, परीक्षा में गिरना पाप है। ध्यान दीजिए, परीक्षा में पाप नहीं है, परीक्षा में गिरना पाप है। परीक्षा के हर एक परिप्रेक्ष्य में यही सिद्धांत लागू होता है। और दूसरी बात हम देखते हैं, आंखों की अभिलाषा। हव्वा ने कहा कि वह पेड़ देखने में मन भावन है। शैतान ने प्रभु यीशु को संसार का राज्य दिखाया। मैं आपको बताता हूं कि वह देखने में मन भावन है। सब कुछ शैतान के हाथ में है। आज संसार को संचालित करने वाली एक परमेश्वर रहित एक नीति है। एक दिन ख्रिस्त विरोधी खड़ा होगा जो शैतान की ओर से इस संसार पर राज्य करेगा। यह संसार अपने प्रदर्शन, अपनी मानवीय महिमा में बड़ा आकर्षक दिखता है। दुनिया चकाचौंध है जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं। अब हम तीसरी बात देखते हैं, जीविका का घमंड। हव्वा ने देखा कि यह पेड़ ज्ञान प्राप्ति के लिए चाहने योग्य है। बहुत से लोग अपने परिवार का घमंड करते हैं, अपनी जाति का घमंड करते हैं। जर्मनी के शासक हिटलर को भी अपनी जाति का घमंड था। यह जीवन का घमंड है। हम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझते हैं। यही मानसिकता धर्म में भी प्रवेश कर चुकी है। मुझसे एक व्यक्ति ने कहा, मैं आपके रेडियो कार्यक्रम का हार्दिक स्वागत करता हूं। उसने हमें आर्थिक सहयोग भी दिया था। उसने कहा कि वह अनेक श्रोताओं को जानता है। परंतु वह हमारा बाइबल अध्ययन नहीं सुनता है। उसके विचार में वह अपनी समझ में परिपक्व विश्वासी था, परंतु उसकी बातों से सिद्ध होता था कि वह वास्तव में अविकसित विश्वासी है। शैतान ने यीशु को एक और बात के लिए उकसाया। उसने कहा, अपने आप को मंदिर के ऊपर से नीचे गिरा दे और लोग देखेंगे कि तू भूमि पर नहीं गिरा, तेरा बड़ा नाम होगा। परंतु प्रभु यीशु ने उसका विरोध किया। वह पर्व का समय था और वहां असंख्य लोग भी थे। मेरे मित्रों, आज संसार हमारे सामने भी ये तीन परीक्षाएं लाता है। जब हम खाने को, सुंदरता को, धार्मिकता को अपना जीवन लक्ष्य बनाते हैं, तो वह जीवन का सर्वाधिक विकृत दृष्टिकोण है। ये सांसारिक लालसाएं हैं जो अति घातक हैं। हमें इनसे प्रेम नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर इनसे प्रेम नहीं करता है। वह इस सांसारिक प्रवृत्ति का नाश करना चाहता है। हमारा विरोधी कौन है? संसार, शरीर और शैतान। शैतान ने इन्हीं क्षेत्रों में हवा और प्रभु यीशु की परीक्षा ली थी। उसकी युक्ति बदली नहीं है। वह हमारी भी ऐसी ही परीक्षा लेता है और हम परीक्षा में गिर जाते हैं। मेरे मित्रों, अब यूहन्ना हमें इस संसार से प्रेम न करने के कारण बताता है। आइए हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की पत्री 2:17 में। यहाँ पर लिखा हुआ है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। मुझे ऐतिहासिक स्थल देखना बहुत अच्छा लगता है। इंग्लैंड के राजा हेनरी 8 ने कार्डिनल वोल्सी से हेम्पटन कोर्ट छीन लिया था। वोल्सी ने मरने से पूर्व कहा था, काश मैं परमेश्वर की ऐसी सेवा करता जैसी राजा की तो मैं यहां ना होता। बाप रे बाप, हेनरी 8 कितना खतरनाक था। उसकी अनेक रानियां थी। जब किसी रानी से उसका मन भर जाता था तो वह उसे सिर काटने के लिए टावर ऑफ लंदन भेज देता था। यह टावर ऑफ लंदन की रक्त रंजित कहानी है, जीवन के घमंड और शरीर की अभिलाषा की कहानी है। हर एक ऐतिहासिक स्थल की अपनी सुंदरता है, परंतु सब कुछ समाप्त हो गई। सब महान पुरुषों की महिमा कहां गई? कब्र में। सब कुछ समाप्त हो गया है। मेरे मित्रों, मैं कभी कभी अपनी युवावस्था के बारे में सोचता हूं और लालसा करता हूं कि मुझे वही बल एवं जोश फिर से मिल जाए। काश मैं अपनी युवावस्था में गंवाया गया समय परमेश्वर के लिए काम में ले पाऊं। संसार समाप्त होता जाता है। मेरे मित्रों, समय के साथ हमारे बल भी घटते जाते हैं। लिखा है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जी हां, आप किसी स्थायी बात पर काम क्यों नहीं करते? किसी स्थिर एवं चिरस्थायी बात का प्रयास क्यों नहीं करते? आप उसी के लिए काम करते हैं जो विनाशवान है, जो कुछ क्षण के बाद नष्ट हो जाएगा। यूहन्ना आगे कहता है, पहला यूहन्ना के पत्र 2:18 हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वह कहता है कि हे लड़कों, इन विश्वासियों में आत्मिक अनुभव प्रथम चरण में है, जैसा हमने 12-14 में देखा था, पितर जवान तब लड़के। ये लड़के पूर्ण परिपक्व विश्वासी नहीं हैं, वे संसार में हैं, और अति संभव है कि वे यूहन्ना द्वारा व्यक्त इन तीन परीक्षाओं के शिकार हैं। यहाँ पर यूहन्ना कहता है यह अंतिम समय है, यह अंतिम समय चल रहा है, जब परमेश्वर अपने नाम के निमित्त एक जाति तैयार कर रहा है। यह समय उसकी वाणी सुनने का है। उद्धार की ऐसी क्या शीघ्रता है। कल शायद हम यहां ना हो, कल आप मेरी आवाज ना सुन पाए। अतः वचन का सुनाना और सुनना अति महत्वपूर्ण है। यूहन्ना कहता है तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। यूहन्ना के समय में मसीह के विरोधी थे, परंतु ख्रीस्त विरोधी का अभी आना है। यहां मसीह के विरोधी के दो अर्थ हैं, एक मसीह का विरोध करने वाला और दूसरा उसकी नकल करने वाला। मेरे मित्रों, अब प्रश्न यह है, क्या वह झूठा मसीह होगा या मसीह का विरोधी होगा। पहला यूहन्ना में मसीह के विरोधी के अनेक संदर्भ हैं। मसीह के विरोधी की पहचान क्या है? वह प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का इनकार करेगा। पद 22 में हम यही देखेंगे। आपको स्मरण होगा कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और उसके 5 पद में प्रभु यीशु ने कहा कि उसके नाम से अनेक जन आकर धोखा देंगे। अतः मसीह विरोधी स्वयं को मसीह कहेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय में इन दोनों का उल्लेख है। शैतान पशु को समुद्र से बुलाता है। यह एक शासक है जो प्रभु यीशु का विरोधी होगा। एक और पशु भूमि से उभरेगा जो मेमना दिखाई देगा, परंतु वह भेड़ की खाल में भेड़िया है। वह परमेश्वर के मेमने की नकल करेगा जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 29 पद में यह एक धर्मगुरु होगा। शासक प्राचीन रोम अन्य जाति से होगा और धर्मगुरु इसराइल से। ये दोनों अंत समय में उभरेंगे। एक मसीह का विरोधी होगा और दूसरा मसीह की नकल होगा। हम पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय के 19 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। यूहन्ना कहता है कि प्रभु यीशु का अंगीकार करने वालों में कुछ ने केवल बाहरी दिखावा किया है। उन्होंने मसीही नाम अपनाया और कलीसिया की सदस्यता भी ली। उन्होंने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा भी लिया। वे प्रभु भोज में भी सहभागी हुए। यूहन्ना कहता है कि उनकी पहचान यह है कि वे अंत में अपना रंग दिखाते हैं। वे विश्वासियों की देह से निकलकर सांसारिकता में लौट जाते हैं। दूसरा पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 22 पद को मैं उड़ाव सुअर का दृष्टांत कहता हूं। उड़ाव पुत्र तो सुअरों में से लौटकर अपने पिता के घर आ जाता है, परंतु नहलाया हुआ सुअर लौटकर कीचड़ में जाता है। उसे नहलाया गया, उसके गले में हार पहनाया गया, कोलगेट से उसके दांत भी साफ किए गए, उसे साफ बिस्तर भी दिया गया, परंतु उससे वह सब मन भावन नहीं लगा। उसने कहा मैं अपने पिता के पास कीचड़ में लौट कर जाऊंगा, और वह लौट कर अपने पिता के पास कीचड़ में कूद पड़ा। क्यों? क्योंकि वह सुअर था। जी हां, वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं। यह कठोर वचन है, परंतु सत्य है। अनेक जन विश्वासी होने का अंगीकार करते हैं, दावा करते हैं, परंतु वे सच्चे विश्वासी नहीं है। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 21 पद में प्रभु यीशु ने यहूदा के विषय में कहा था कि पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। पहले ही प्रभु भोज में एक विश्वासघाती था, परंतु था वह विश्वास योग्य शिष्यों में से एक था। यूहन्ना 6 अध्याय के 70 पद में प्रभु यीशु ने कहा था, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यहूदा इस्करियोती एक शिष्य था, वह शिष्यों के सदृश व्यवहार भी करता था, उसमें सामर्थ था। मेरे विचार में वह आश्चर्य कर्म भी करता होगा। वह अन्य शिष्यों के साथ प्रचार भी करता था, परंतु वह झूठा था और वह पहचाना नहीं गया। मेरे मित्रों, हम में से आज कई लोग भी ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। वे अपने आप को विश्वासी एक सच्चा मसीही कहते हैं, परंतु वे हैं नहीं। यूहन्ना की यह बात कठोर अवश्य है, परंतु है हमारे ही लिए। प्रभु यीशु ने निकुदेमुस से कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 3 पद में, यदि कोई नए सिरे से जन्म न ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यूहन्ना कहता है कि वे हम में से थे जो परमेश्वर की सच्ची संतान दिखाई देते थे, परंतु वास्तव में वे थे नहीं। परमेश्वर की संतान की पहचान है परमेश्वर का वचन। जी हाँ, यह सुनकर हम सबको अपने आप से एक प्रश्न पूछना है, क्या मैंने प्रभु यीशु के क्रूस के प्रकाश में अपने पापों का सामना किया है? क्या मैं अपने पाप और अपने अपराधों को लेकर परमेश्वर के समक्ष पश्चाताप के साथ उपस्थित हुआ हूं? क्या मैंने अपने उद्धार के लिए केवल उसी पर भरोसा किया है, निर्भर किया है? क्या मेरा जीवन नया जन्म पा चुका है? क्या मेरे जीवन में नया जन्म प्राप्त परमेश्वर के जन का प्रमाण है? क्या मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता हूं? क्या मैं परमेश्वर के वचन की मनोकामना रखता हूं? क्या वह मेरी रोटी है? क्या वह मेरा जल है? क्या वह मेरा भोजन है? क्या मैं भाइयों से प्रेम रखता हूं? क्या मैं प्रभु यीशु से प्रेम रखता हूं? मेरे मित्रों, हमें इन बातों ही का ध्यान रखना है। इस संबंध में परमेश्वर का वचन हमारे साथ संयोजित होता है। पौलुस निश्चित शब्दों में विश्वास द्वारा धर्मी ठहरने की चर्चा करने के बाद कहता है, गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 15 पद में, न खतना और खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। जी हां, आप परमेश्वर के अनुग्रह पर गौरव करके यह नहीं कह सकते, मैं कलीसिया की सदस्यता और बपतिस्मा को नहीं मानता। आप चाहे उसे माने या ना माने, मुख्य प्रश्न यह है, क्या आपका नया जन्म हो गया है, या आप केवल इन्हीं बातों में विश्वास रखते हैं? यहां फिर वही मुख्य प्रश्न है, क्या आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं? मेरे मित्रों, कुरिन्थ नगर के विश्वासियों को अपने परमेश्वर की संतान होने पर संदेह हो रहा था, तो पौलुस ने उन्हें लिखा, दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 13 अध्याय उसके 5 पद में, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो या नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यही नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। मेरे मित्रों, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि आप निश्चिंत रूप से और निश्चित होकर के जाने कि आप परमेश्वर की संतान हैं। अपनी पहली पत्री में भी पौलुस ने उन्हें लिखा, पहला कुरिन्थियों की पत्री 16 अध्याय उसके 13 पद में, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, विश्वास में बलवंत हो। मेरे मित्रों, आपका मसीही जीवन कैसा है? क्या आज आप वास्तव में परमेश्वर की संतान हैं? मुझे इस बात की इतनी चिंता नहीं कि आपने पाप किया है। मेरी मुख्य चिंता का विषय यह है कि आपने पाप करने के बाद क्या किया? क्या आप पाप में ही गिरे रहे? उड़ाओ पुत्र सुअरों में था, परंतु वहां रुका नहीं, वह उसका स्थायी पता नहीं था। जी हां, यदि आप उसे कुछ समय बाद पत्र लिखते तो उसे वह पत्र नहीं मिलता, यदि सुअर उसे उसके घर न भेजते, क्योंकि वह तो अपने पिता के घर लौट गया था। परमेश्वर की संतान पाप करके आंसू बहाते हुए अपने परमेश्वर पिता के पास पश्चातापी मन से जाती है। यदि वह ऐसा न करे तो वह परमेश्वर की संतान नहीं है। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आपका जीवन इस समय कहां है। क्या आज आप अपने पापों के लिए पश्चाताप करके प्रभु यीशु के पास आ रहे हैं, या आप अभी भी सुअरों के बाड़े में हैं, उस कीचड़ में हैं, पाप के दलदल में हैं? परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि हमें नया जन्म लेने की आवश्यकता है, और यह वचन के द्वारा ही संभव है। मेरे मित्रों, यदि आज आप सिर्फ विश्वासी का जीवन जी रहे हैं और उसमें सत्यता नहीं है, तो आपको इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है, नया जन्म का अनुभव लेने की आवश्यकता है। आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आज की इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आप अवश्य ही अपने जीवन के लिए एक सही निर्णय लेंगे, ताकि आप परमेश्वर के सच्चे संतान कहे जाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
हम जाएंगे वहीं जहां यीशु
जहाँ यीशु रहता है।